हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। दूसरी तरफ विधिक आंशी को अपने होटल वाले घर में लेकर आ चुका था। आंशी वहाँ पहली बार आई थी। विधिक ने जो भी किया था उसके बाद से वो परेशान थी और पूरे रास्ते उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। घर पहुँचते ही विधिक ने आंशी को बिठाया और फिर उसका गाल पर हाथ रखते हुए कहा, कब तक ऐसे ही परेशान रहोगी बटरफ्लाई? मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था तो मैं सब छोड़ चुका हूँ। उन लोगों ने तुम्हारे साथ जो भी किया था उसके बाद उन्हें सजा देना बनता है। देखो क्या हालत करती तुम्हारी। मैं ठीक हूँ विधिक, वो लोग जैसे आदमी थे उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती थी। मैंने अपनी तरफ से फाइट करने की कोशिश की थी पर नहीं कर पाई। आई एम अ लूजर, आंशी ने नजरें झुकाकर परेशान चेहरे के साथ कहा। उसे भी खुद पर काफी डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा था। इतनी ट्रेनिंग के बावजूद उन गुंडों ने उसे किडनैप कर लिया था। आंशी को उदास देखकर विधिक उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने आंशी का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, मेरी बटरफ्लाई हर चीज में बेस्ट है। तुमने अपनी तरफ से कोशिश की, मेरे लिए यही काफी है। आगे से कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। आंशी ने हल्का मुस्कुराते हुए उसकी बात पर हामी भरी। न जाने क्यों लेकिन विधिक का ये रूप देखकर आंशी को पुरानी बातें याद आने लगी, जब वो दोनों साथ में अच्छे से रहते थे और उसे विधिक की सच्चाई पता नहीं थी। फिर धीरे धीरे सब कुछ उसके सामने किसी मूवी की तरह चलने लगा। विधिक का उसके दोस्तों को मारना, उसे टॉर्चर करना और फिर उसे अपने पास आने के लिए मजबूर करना। सब कुछ याद आते ही आंशी की आंखें नम होने लगी और वो रोने लगी। हे बटरफ्लाई, इतनी सी बात के लिए रोने की क्या जरूरत है? तुम ना बिल्कुल नहीं बदली, 2 साल बीत गए हैं लेकिन अभी भी बड़ी नहीं हुई हो। विधिक ने आंशी को गले लगा लिया और उसे चुप करवाने लगा। आंशी सुभगते हुए बोली, कभी कभी लगता है आई एम गुड फॉर नथिंग। बहुत कुछ करना चाहती हूँ, कोशिश भी करती हूँ पर कुछ नहीं हो पाता। बोलते हुए आंशी विधिक से अलग हुई और उसे कहा, विधिक मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले रहना है, मैं थक गई हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए। ऑफकोर्स बटरफ्लाई, ये भी कोई कहने की बात है, विधिक ने कहा। फिर उसने आंशी की तरफ देखा। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी और कपड़े फटे हुए भी थे। उसने आंशी से कहा, तुम ऐसा करो, नहा लो। मेरे पास फिलहाल के लिए तुम्हारे लिए कपड़े तो नहीं है पर शिवांगी यहाँ रहती थी तो उसके कुछ नए कपड़े होंगे, मैं तुम्हें ला देता हूँ। विधिक के मुंह से किसी और लड़की का नाम सुनकर आंशी ने उसकी तरफ आंखें छोटी करके देखा और पूछा, तुम यहाँ किसी लड़की के साथ रहते थे? अच्छा, तो मेरी बटरफ्लाई को जलन हो रही है, विधिक ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे जाने के बाद मैं किसी लड़की के साथ उस तरह नहीं रहा जैसे तुम सोच रही हो। हाँ, तुम्हारे जाने के बाद काफी लड़कियां मेरे करीब आईं या मैं भी उनके करीब गया होगा, लेकिन मैं चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाया। कोई मेरी बटरफ्लाई जैसा हो ही नहीं सकता। और वैसे भी मैं जिस लड़की की बात कर रहा हूँ वो वही सीक्रेट एजेंट थी जो तुम्हारे सो कॉल्ड हस्बैंड की एक्स गर्लफ्रेंड थी। आंशी को वहीं पर छोड़कर विधिक उसके लिए कपड़े लाने चला गया। वहीं आंशी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। विधिक का बदला हुआ बर्ताव देखकर आंशी ने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, कौन कह सकता है इस इंसान ने 2 घंटे पहले एक आदमी को बेरहमी से मारा है, तो एक को मारने वाला था। ये इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है इतना सब कुछ करने के बावजूद? काश तुम ऐसे ही होते, तुम मेरे विधिक होते ना कि कोई विधिक राणा। इसके चक्कर में सारा प्लान गड़बड़ हो गया। मैं अमन को कैसे कॉन्टैक्ट करूं? वो मुझे ढूंढ रहा होगा। आंशी को भी प्लान फेल होने की वजह से बुरा महसूस हो रहा था। विधिक आंशी के लिए ड्रेस लेकर आया। वो उसे देते हुए बोला, सॉरी बट शिवांगी इंडियन ही पहनती थी तो तुम्हें इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। सुबह तक तुम्हारे लिए कपड़े मंगवा दूंगा। आंशी ने उसके हाथ से कपड़े ले लिए थे। वो किसी भी कमरे में जाने से पहले कंफ्यूज हो रही थी तो विधिक ने उसका कंधा सहलाते हुए कहा, ये पूरा घर हमारा ही है तो तुम्हें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तुम मेरा रूम यूज कर लो। आंशी ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर बाथरूम में चली गई। उसने शिवांगी के कपड़े पहने तो वो उसे फिट नहीं आ रहे थी। दिव्याना की हाइट आंशी से ज्यादा थी। आंशी पतली होने की वजह से उसे दिव्याना के कपड़े फिट भी नहीं हो रहे थे। उस लूज सी बड़ी ड्रेस में वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। कपड़े पहनने के बाद आंशी ने खुद को आईने में देखा तो उसे खुद को ही अजीब महसूस हुआ। उसने धीरे से बड़बड़ाकर कहा, अजीब मुसीबत है, मैं किसी और के कपड़े क्यों पहन रही हूँ? जानती हूँ ये नए होंगे, उसने ट्राई भी नहीं किए होंगे पर मुझे फिट भी नहीं आ रहे और मैं कितनी अजीब लग रही हूँ। आंशी को अंदर गए हुए टाइम हो गया था। वो काफी देर से बाहर नहीं आई तो विधिक बाथरूम के गेट के पास आया और उसने दरवाजा खटखटाते हुए पूछा, क्या हुआ बटरफ्लाई, तुम कुछ ज्यादा ही टाइम नहीं ले रही? उसे आंशी पे प्यार जरूर था लेकिन वो उस पर आंख बंद करके भी भरोसा नहीं कर सकता था। ये बात विधिक ने जाहिर तो नहीं की लेकिन विधिक उसकी हर हरकत पर नजर बनाए हुए था। आंशी ने गुस्से में दरवाजा खोला और फिर विधिक के सामने आकर चिल्ला कर बोली, ये ऐसे कपड़े पहन के मैं कैसे आऊं बाहर? जोकर जैसी फीलिंग आ रही है। तुम जानते हो ना, जब तक ये ड्रेस मुझे सेट नहीं होती तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं पहनने किसी और के कपड़े, तो मेरे लिए दूसरे कपड़े लेकर आओ अभी के अभी। अगर नहीं ला सकते तो मैं वापस वही पहन लेती हूँ। आंशी अपनी तरफ से काफी अच्छा कर रही थी। वो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रही थी जैसे कि पहले करती थी, और इससे विधिक को शक भी नहीं हुआ। अमन ने उसे यही समझाया था कि उसे स्टार्टिंग में विधिक को थोड़ा टाइम देना होगा और उसका भरोसा जीतना होगा। वो जाते ही अपना काम शुरू नहीं कर सकती। पहले कुछ दिनों से बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करके विधिक को खुद पर यकीन दिलाना होगा, और आंशी वही कर रही थी। तुम्हें मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कहीं तुम्हारे पीरियड्स तो नहीं आने वाले, विधिक ने हल्के तरीके से पूछा, जिस पर आंशी उसकी तरफ घूर कर देखने लगी। फिर आंशी ने चिढ़ते हुए कहा, तुम मेरे लिए कपड़े लेकर आ रहे हो या नहीं? और नहीं ला सकते तो मैं बाथरूम में टावल लपेट के बैठ जाती हूँ, जब कपड़े आ जाएंगे तो मुझे दे देना। आंशी गुस्से में विधिक के मुंह पर दरवाजा बंद करने को हुई। वो वैसे भी विधिक के ज्यादा करीब नहीं रहना चाहती थी, और उसे अच्छा बहाना भी मिल गया था। आंशी दरवाजा बंद करती उससे पहले विधिक ने दरवाजा पकड़ लिया। विधिक ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और आंशी की आंखों में देखते हुए कहा, आज भी वही बचपना और छोटी छोटी चीज के लिए जिद करना। मुझे तुम्हारी जिद करने से प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझ पर गुस्सा भी कर सकती हो। तुम इकलौती इंसान हो जिसका गुस्सा देखकर भी मुझे प्यार ही आता है, पर ऐसे तो मत करो। कपड़े आने में भी 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, तब तक क्या तुम बाथरूम में बैठी रहोगी? ठीक है तो तुम पर बीच का रास्ता निकाल लो, मैं आ जाऊंगी बाहर, आंशी ने जवाब दिया और फिर विधिक का हाथ हटाकर दरवाजा बंद कर लिया। आंशी कितना भी बचपना कर ले, लेकिन विधिक उससे कभी इरिटेट नहीं होता था। उसने अपने कपड़ों में से एक लंबा शर्ट निकाला और आंशी को देते हुए कहा, मुझे पता है तुम ये पहन लोगी और तुम्हें अच्छा भी लगता है मेरे कपड़े पहनना। मैं नीचे से खाना और तुम्हारे लिए कपड़े अरेंज करके आता हूँ, तब तक तुम तैयार हो जाना। विधिक को शर्ट देने के बाद वो नीचे आ गया था। पूरे घर में कैमरे लगे हुए थे, इस वजह से उसने आंशी को कोई वार्निंग नहीं दी। अगर आंशी कुछ ऐसी वैसी हरकत करती तो विधिक को पता चल जाता। जैसे ही विधिक नीचे आया उसे वहां अमन मिला। अमन को देखते ही विधिक के फेस पर इविल स्माइल आ गई।